نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26 پارے کا آخری رکن شروع کریں گے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 یعنی 11 سے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں کتنا خوبصورت اسلام ہے آپ دیکھیے پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات تھی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے میں صلح کرا دیا کرو تعلقات کو بہتر کیا کرو بدگمانیاں چھوڑ دو اور اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب پیش کرے جس کی وجہ سے بدگمانیاں ہوتی ہیں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا مذاق نہ اڑاؤ اور مذاق اڑانے سے مراد محض زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہوتا نقل اتارنا اشارے کرنا اس کی بات اس کے کام اس کے لباس کسی جسمانی نقص عیب کی صورت میں دوسروں کی توجہ اس کی طرف دلانا تاکہ لوگ اس پر ہنسے یہ سب کچھ مذاق اڑانے میں آتا ہے آپ دیکھیے کہ دوسرے کی عزت خراب نہیں کرنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جانیں مال عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے تو ہم مال تو لوگوں کا نہیں لیتے جان لینے کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں عزت کتنی جگہ لیتے ہیں تو ایسی تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر ہے مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا اڑانا جائز ہے مطلب یہ ہے کہ موقع بڑا اہم ہے اور دوسری وجہ اس سے ایک اور بہت سائڈ پہ اشارہ ملتا ہے کہ اسلام مکس گیدرنگ کا عادی ہی نہیں مخلوط سوسائٹیز نہیں ہے سیگریگیشن ہے اس لیے کہا کہ مرد تو مردوں میں ہی بیٹھتے ہیں یہ تو نہیں اسلام کہتا کہ ایک ہی جگہ سب بیٹھے ہیں اور ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے کوئی دیور بھابھی اور دوستوں کی بیویوں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ عموماً جو مذاق ہوتا ہے وہ بے تکلف مجلسوں میں ہوتا ہے تو غیر محرم مردوں عورتوں کا ایک جگہ بیٹھنا اسلام میں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں آگے کہیں گئیں جس میں عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو یہ بھی تو مزاج خوبصورتی کی طرف مائل کرتا ہے نا ولا تلمیزو انفسکم آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے وہ ظالم ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھولتا ہے اور وہ کیا کہ دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کرو گے تو اصل میں تم اپنے ساتھ کر رہے ہو یہ لفظ تلمز ہے لمز کہتے ہیں تانے اور تشنی کو چوٹیں کسنا پھپتیاں کسنا الزام دھرنا اعتراض جھڑنا ایپ چینی کرنا کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں میں کسی کو نشانے ملامت بنانا آپ دیکھیے کہ بہو کو تانے دینا اس کے حسب کے نصب کے باتیں کرنا کیا یہ سب اس میں نہیں آتا اللہ کے کلام کی گہرائی دیکھیے کہ لا یلمز بعضکم بعضا ایک دوسرے پر تانا نہ کرنے کی وجہ کہا لا تلمز انفسکم گویا کہ جو دوسرے پہ بات کرتا ہے وہ اصل میں خود اپنے اوپر تانا کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری دفعہ بات ہوئی ریکارڈنگز میں موجود ہیں یہ موضوع ضرور سننے کے قابل ہے غیبت کیسے چھوڑیں بیوٹیفائی یور سیلف کے سیشنز میں اس پہ بات ہوئی تھی اور آپ اگر چاہیں تو تفصیل سے سبیل الجنہ میں اس کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں بہت سارے سپیکرز کی آپ کو اس موضوع پہ سپیچز اور ویڈیوز ملیں گی کہ یہ کتنا برا ایک عمل ہے جو عام لوگوں پہ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں یہ سب کچھ زیادہ ہے پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہہ دی کہ دوسروں کو برے القاب نہ دو تو ایسا نام جو کسی کو برا لگے ٹھگنا کہنا لنگڑا کہنا کانا کہنا موٹو اور کسی کو گدا کہنا کچھ یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو اسلام قبول کرنے کے باوجود اس کو یہودی کہنا اور نیو مسلم اس طرح کے لفظ ہر وہ چیز جو کوئی اگلا پسند نہیں کرتا اس کو نہ کرے اب پہچان کے لیے کسی کا نام لینا پڑے مثلا دیکھیے کہ عبداللہ نام کے کئی لوگ ہیں اب ایک نابینا ہے تو کوئی پوچھے کون سا عبداللہ کے تو آپ کے وہ جو نابینا ہے تو پھر تو بات اور ہے مطلب یہ کہ آپ کی نیت اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے اس طرح کی چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں یہ تو وہ چیزیں تھیں جو زبان سے متعلق تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ دل کے کچھ گناہ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بس گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے सोचिए, देखो तुम खुद इसे घिन करते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अभी इस आयत में देखिए कितना कुछ है। पहली बात तो नोट करें, हर आयत आमनू से शुरू हो रही है, ईमान का तकाजा है कि ये सब छोड़ दो। पहली बात इस आयत में गुमान, गुमान क्या है? बहुत ज्यादा गुमान ना करो, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में ना सोचो। एक वो गुमान होता है जो इंसान अल्लाह और उसके नबी के साथ और ईमान वालों के साथ हुस्न-ए-ज़न के तौर पे करता है, ये तो पसंदीदा है। एक वो बदगुमानी होती है जो किसी के बुरे अमल को देख के इंसान के दिल में आती है, वो तो साफ जाहिर है, फासिक है तो वो अपना फिसक दिखा रहा है, उसको भी एक तरफ कर दीजिए, वो तो करना पड़ेगा। इसी तरह आप देखिए कि बाज बदगुमानी ऐसी होती है उसके ऊपर गुजारा ही नहीं, अदालत में जाते हैं, दोनों तरफ खड़े, कोई गवाह है कोई दूसरी तरफ है। यहां असल में गुमान से मुराद है कि जो किसी के बारे में अपने ही तौर पे सोच लेते हैं, मसलन आप कहें कि ये फलां बड़ा झूठा है, फलां मुनाफिक है, ये ऊपर से करता है, नहीं नहीं ये सिर्फ रियाकारी है, नहीं ये सिर्फ बड़ा बनना चाहते हैं, नहीं ये बस लीडर बनना चाहते हैं, नहीं जी इनको तो अपनी चुदराहट चाहिए, इस तरह की बदगुमानियां मना है। बिला सबब बुरी राय पैदा करना, बदसनी करना, इस तरह से लेना बातें कि जिसमें अगले को खबर भी ना और आप उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी से कोई गलती हो गई, आप उसकी गलती पे तावीलें करें। किसी का कॉल है गालिबन इमाम इब्ने कय्यम का कि किसी की कोई बुरी चीज दिख भी जाए तो तावीलें करो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, 99 यानी 99 उसकी तावीलात करो, और ना समझ आए तो फिर को अच्छा एक और कोई वजह होगी स्वामी जो मैं नहीं पहुंच पा रहा कि उसकी ये वजह, यानी हमेशा अपने भाई को साइड दो। और आप देखेंगे कि बात बदगुमानी से शुरू होती है तो अगले सारे मरहले होते हैं, जब आप किसी के साथ बदगुमान होंगे तो साथ ही किसी का तजस्सुस शुरू होगा, तो कला तजस्सुस, लोगों के राज ना टटोलो, उनके ऐप ना तलाश करो, खुफिया खत ना पढ़ो, किसी की ईमेलें ना चेक करो, किसी के पर्स ना ढूंढते फिरो, कुछ ना करो ऐसी, चाहे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिस तरह करते हैं लोग, ये सब कुछ पसंदीदा नहीं है। जिनके हाल पे पर्दा पड़ा हुआ है पर्दा ही रहने दो, कान लगा लगा के दीवारों से हमसायों की बातें ना सुनो, किसी के कमरे की बातें ना सुनो, कुरेद कुरेद के किसी की चीजों की तरफ ना जाओ, ये सारी चीजें बद अखलाकी में आती हैं। हम अपने लिए पसंद करते हैं? कभी नहीं करते। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा कि वो लोगों जो जुबान से तो ईमान लाए हो मगर तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, मुसलमानों के छुपे हुए हालात की खोज ना लगाया करो, क्योंकि जो मुसलमानों के ऐब तलाश करेगा अल्लाह इसके ऐबों के पीछे लग जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए इसको इसके घर में रुसवा करके छोड़ता है। अल्लाह अकबर, ये अबू दाऊद की रिवायत है, इसको तो अपने लिए स्लोगन बना ले, अगर मैं किसी के ऐबों के पीछे लगूंगी तो अल्लाह मेरे लग जाएगा, तो जीतेगा कौन? अल्लाह जीतेगा ना। इसी तरह एक रिवायत में आपने कहा कि अगर तुम लोगों के छुपे हुए हालात को मालूम करने लग जाओगे तो इनको बिगाड़ दोगे या बिगाड़ के करीब पहुंचा दोगे, ये भी अबू दाऊद की रिवायत है। तो बदगुमानी से बचिए, सोचे ही ना। और मैं सोचती हूँ इन सारी बातों का एक इलाज है, खुद को बिजी कर ले, ये सब कुछ पीछे है। एक रिवायत में आता है कि जिसने किसी का आयब देखा फिर उसको छुपा लिया, पर्दा डाला, गोया कि एक ने जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया। तो लिहाजा ऐसा ना कीजिए। अब आपके अपने बच्चों का तजस्सुस ना करें, तो इस पर बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है कि उनको एतमाद में लीजिए, दोस्तियां कीजिए, वो खुद दिखाएं, वो खुद बताएं, उनसे दोस्ती में पूछिए बेटा आज क्या हुआ, किधर गए, चलो आओ अलमारी ठीक करते हैं, आओ बैग ठीक करते हैं, बजाय इसके कि आप उनको ऐसी चीज करें, वो आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे। आपने वो मारूफ वाक्य सुना होगा ना कि एक मौके पर हजरत उमर एक रात के वक्त गश्त में थे तो आवाज सुनी जब अपने घर में था, आपको शक गुजरा कुछ कि वो शराब पी रहा है, आप उसकी दीवार पे चढ़ गए, देखा वहां शराब भी थी और एक औरत भी थी, आपको गुस्सा आ गया, और उम्र देख लें ऐसी चीज तो गुस्सा क्यों ना है, कहने के अल्लाह के दुश्मन क्या तूने ये समझ लिया कि तो अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दा नहीं उठाएगा। इसने कहा अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना करें, अगर मैंने एक गुना किया तो आपने तो तीन किए, अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया आपने तजस्सुस किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि घरों में इसके दरवाजों से आओ आप दीवार से आ गए, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि दूसरों के घरों में इजाजत लेकर आओ आप मेरी इजाजत के बगैर आ गए। अब सोचिए उमर ने क्या किया होगा, पुलिस को बुलाओ और इनको जेल में डालो, नहीं गलती मान गए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, वादा ले लिया कि देखो आइंदा अच्छे काम करना बुरे काम ना करना। तो इस्लामी हुकूमत के लिए भी जायज नहीं है कि ऐसे ही लोगों की बातों के पीछे पड़ जाए, और कहां फिर स्कैंडल्स और सियासतदानों के, और अल्लाह माफ करे जो कुछ उनके खानदानों की तस्वीरें जो लोग ईमेलों में भेजते रहे कि ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तजस्सुस से बचना, देखिए जब दिल में बदगुमानी आई तो तजस्सुस हुआ, तजस्सुस हुआ तो दूसरों से उसकी बातें शुरू, इसको आप गीबत कहेंगे, गीबत कह के ऐसी बात करो जो किसी के सामने की तो उसको बुरी गुजरेगी, नापसंदीदा होगी, सामने करेंगे तो वो नापसंद करेगा, झूठी बात होगी तो ये बुख्तान होगी, मारूफ रिवायत आप सब जानते हैं। तो लिहाजा गीबत क्या है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करनी, गैब से ना, वो अपना दिफा नहीं कर सकता, मुर्दा मुर्दा जैसे अपने आप को नहीं उठा सकता, तो गीबत करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी भी बहुत सख्त हुरमत है। क्यामत के दिन इंसान की नेकियां जाया हो चुकी होंगी, ढूंढेगा इंसान मिलेंगी नहीं, पता चलेगा जो गीबत करते थे उसकी वजह से गुम गई। अल्लाह अकबर, इससे बचने की जरूरत है। झूठ कहेंगे फिर तो बहुत ही बड़ी बात होगी। हाँ कोई मौका है, कोई रिश्ता कर रहा है, पूछते हैं बताएं भी उधर कर लें, लड़का कैसा है लड़की कैसी है, तो हक के साथ बात कर दें, मुबहम बात कर दें, ढकी छुपी बात कर दें, खुद चेक कर लें, देख लें। लेकिन किससे कहानी और इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें क्या पता, ये ना कीजिए। ये तो वाकई एक इंसान की बहुत ही ज्यादा कमजरफी की अलामत है। वो आपने मशहूर बात भी तो सुनी होगी ना कि जो एवरेज माइंड होते हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं, जो मिडल माइंड होते हैं वो वाकयात देख रहे होते हैं, और जो बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं। कई मौके हैं जिस पे गीबत की भी जा सकती है। इससे बेहतर है कि आप लोग खुद वो पूरा टॉपिक सुने ताकि आप लोग उससे अमल ले सकें। इस वक्त तो सिर्फ किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है। ये जो मुर्दा भाई का गोश्त खाना है ये कैसा लग रहा है, आप सोचिए, कोई सोच सकता है इसके बारे में? और अल्लाह ने कुरान में कहा तो क्या ये मुबालग है, क्या ये एग्जेजुरेशन है, ऐसी इस्तियार है? नहीं है। मतलब ये है कि मुर्दा का गोश्त खाओगे तो नंबर एक है कि वो मुर्दा अपने आप को बचाएगा नहीं, गीबत करने वाला को बचा नहीं रहा। दूसरी बात है कि ये नफरत के काबिल अमल है ना। गोश्त तो किसी जानवर का हो वो नहीं बंदा खा सकता ऐसे, तो क्या एक इंसान का खाएगा? तो बताओ कि जब इस तरह फितरत तुम्हारी इस चीज से गिन खाती है तो तुम किस तरह से फिर उस काम को करोगे? वत्तकुल्ला, अल्लाह से डर जाओ। इसके बाद कुछ इज्तमाई खराबियों का तस्करा। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजकार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। यहाँ देखिए, नस्ली तासुब से रोका गया। इस्लाम की बुनियादी आमन हुआ है, ईमान के रिश्ते से जोड़ता है। ये नहीं कहा ओ मक्का वालो, अरबो, ओ अजमियो, ओ गोरो, कालो, वाइट, ओ नेशनल्स, ओ पाकिस्तानी, ओ ईरानी, ओ सोमालियो, नहीं। इस्लाम ने एक ही नस्बत से पुकारा और वो ईमान की नस्बत है। इसके अलावा जितनी भी नस्बतें हैं वो सब गैर इस्लामी है। हत्ता कि किसी को मुल्क के नाम पे जमा करना ये भी कोई इस्लाम की दावत नहीं है। रंग, नस्ल, जुबान, वतन, कौमियत, ये सब बुत हैं। इनको तोड़ेंगे तो फिर लोग जमा होंगे। अफसोस की बात है, आज हम मुस्लिम में भी कहते हैं ये सोमाली मुस्लिम है, जी ये अरबियों की मस्जिद है, ये सोमालियों की, ये बंगालियों की है। पहले ही दिल में एक आने लग जाती है अजनबियत के, हम तो इधर नहीं जाएंगे। ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तस्कीर के लिए अपनी जुबान में खुतबा है, उस प्रोग्राम को करने के लिए कोई हरज नहीं है किसी एक खास कल्चर के मुसलमान एक मस्जिद बना ले, लेकिन उस पर दूसरों की राहें बंद नहीं करनी चाहिए और उसको घटिया या दूसरे को आला नहीं समझना चाहिए। फिर आप देखिए कि जो सासें अपनी बहुओं को नसब के दाने देती हैं, कहाँ से आ गई, घटिया खानदान की थी। और जो जालिम मर्द अपनी बीवियों को बातें करते हैं, तेरा तो बाप ऐसा, तेरी फुला, इसको क्या कहेंगे? वो मजाहब और हैं जहाँ ऊंची जात वाले बहुत हैं, भगवान के सर से पैदा हुए और शूदर भगवान के पाँव से पैदा हुए। इस्लाम ने इन सब चीजों को खत्म किया। आज दुनिया में देखिए स्याह फार्म और सफेद फार्मों की कितनी जंगें मौजूद है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए मुल्कों की, आपको पता चल जाएगा। एक वक्त वो था कि बसों में बैठने की जगह अलग थी, वाइट अमेरिकन यहाँ बैठेंगे तो ब्लैक वहां बैठेंगे। किस तरह से यूरोप के लोगों ने बड़े आजम अमेरिका में घुसकर जब रेड इंडियन नस्ल के साथ जानवरों वाला सलूक किया और वहां अपना तसल्लुत कायम किया। हिस्ट्री पढ़ के देखिए तो आपको इस्लाम सबसे ज्यादा महजब दिखेगा। अल्लाह ताला कहते तुम एक हो, मर्द औरत एक है, एक ही नस्ल से हो। तुम पीछे से एक थे, आगे आकर बदल गए हो, तो क्या बड़ी बात है? तो हम सब भी इस चीज को रखें। मैं यहाँ छोटी सी बात कहूंगी कि बस दफा हम इस चीज को एक खास हद तक लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के मसल रिश्तों का मौका है। क्या हम पाकिस्तानी लोग सोच सकते हैं कि किसी सोमाली ब्रदर से हमारी बच्ची का रिश्ता हो, कोई अरबी नस्ल की लड़की हमारे बेटे की बीवी बन जाए? ठीक है, देखिए निभा होने के लिए या हालात के फर्क से और चीज है, लेकिन इन सारी बुनियादों को तोड़ते हैं। मसला ये कि इस वक्त हम जिस दौर में है वो दौर है ही बड़ा अजीबोगरीब। हम सब जो है एक अंधेरों की पैदावार है। जब सच्चा इस्लाम आता है तो सारे इलाकों के मुसलमानों का कल्चर भी एक होता है। ये भी नोट कर लें जुमला, सेम कल्चर बन जाता है जब इस्लाम आता है। फिर आप अरबों की शादी में जाएं या अजमियों की शादी में जाएं, आपको एक ही जैसी लगती है। लेकिन जब असल इस्लाम पीछे होता है ना, तो उसके बाद फिर ये शुरू हो जाते हैं कि हम तो ये रस्में करते हैं, उनकी तो ये रस्में। बेगानगी बढ़ जाती है जब इस्लाम निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की एक डोरी है, उससे निकले ना तो मुसलमान भी बिखर गए। वाकई आज हमारे दिलों में कई दूसरे मुसलमान मुल्कों वालों के लिए भी अजनबियत है। उसकी वजह यह है कि हर एक अपने कल्चर का मुख्ताज हो गया। बहरहाल ये बातें तो बढ़ती ही जाएंगी, आगे चलते हैं। फरमाया, ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मती हो गए, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार कर लो तो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। दर हकीकत मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। दुआ कीजिए अल्लाह में इन सच्चों में शामिल कर ले। फरमाबरदारी जीतेगी, काम जीतेगा, हसब नसब नहीं जीतेगा, अरबी होना नहीं बचाएगा, आजमी होना नहीं पकड़ाएगा। जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, तकवा बचाएगा। एक आदम की औलाद एक बाप से, तकवा बढ़ाते जाइए अल्लाह इज्जत बढ़ाएगा। अल्लाह को सूरतें और माल नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल चाहिए, तुम्हारे आमाल चाहिए। अल्लाह माल और सूरतों से मुतासिर नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया ईमान के दर्जे होते हैं। लम तूमिनु वकूलु अस्लमना, इस्लाम से ईमान तक स्टेप्स होते हैं। शुरू में नया नया इस्लाम आता है, बिल्कुल अभी अल्लाह से मुलाकात होती है बंदे की, एक छोटा सा मामला शुरू हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान के अंदर ईमान आने लगता है, फिर इखलास, फिर वरा, तकवा, बढ़ते बढ़ते एक इंसान आगे पहुंच जाता है। तो आप कह लीजिए कि जब इस्लाम और ईमान इकट्ठा आता है तो इस्लाम बुनियादी सीढ़ी है और ईमान आला दर्जा है। एक फर्स्ट ग्रेड है तो एक थर्ड ग्रेड होगा या फिफ्थ ग्रेड होगा। इसी तरह इस्लाम हमारे अंदर आता है, यकीन करें। शुरू में कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं सारा इस्लाम आ गया, कोई भी नहीं आता। अगले दर्जे में जाते हैं और कम लगता है, और कम, फिर आगे जाते ही जाते हैं। जैसे शुरू में कमाए तो 2,000 भी बहुत लगते हैं, फिर 20,000 भी छोटे लगते हैं। यही हाल ईमान और तकवा का है। शुरू में छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ी लगती हैं, शुक्र है करते तो हैं, लेकिन जरा सा तकवा बढ़ता है तो अब कहते हैं नहीं, मेरा तकवा थोड़ा है, सब नेकी करें मैं इससे बड़ी करूंगी, ये तो पिछले साल भी नेकी की थी, इस साल कुछ और करना है। और होते होते फिर इंसान चमकता ही जाता है, खूबसूरत जीनत आने लगती है इंसान के अंदर। और अल्लाह हमें इसी तरह से ईमान से मुज़य्यन कर दे। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन बि ज़ीनतिल ईमान वजअलनाहु हुदातम मुहतदीन। फिर अल्लाह के नबी को आखिर में पुकारा गया, पूरी सूरत में ईमान वालों की बात हुई, और अब कहा, ए नबी, इस ईमान का दावा करने वालों से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो? हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है और वो हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो अपने इस्लाम का एहसान मजबूर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। अगर तुम वाकई अपने ईमान के दावे में सच्चे हो, अल्लाह जमीन और आसमान की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है। देखिए, अगर सिर्फ हम इस्लाम की ये बुनियादी तालीमात आम कर देना तो यकीन करें लोग इस्लाम से मुतासिर हों, बल्कि इम्प्रेस हों। नॉन मुस्लिम को अपने करीब करने का कोई मौका ना जाने दे। आइए हम सब अपने लिए दुआ करें, मैं अपने लिए करती हूँ, आप अपने लिए करें कि अल्लाह मुझे पूरा ऐसा बना दे जैसी ये सूरत है। अल्लाह मेरा किरदार, इखलाक, सब कुछ अपनी मर्जी का बना, ऐसा बना दे कि कल तू जब मुझे देखे तो तुझे मुझ पर प्यार आ जाए। अगली सूरत पे चलेंगे। नाम के साथ सूरत भी बड़ी खूबसूरत है, सूरत काफ, एक लफ्ज़ वाली सूरत है, सबसे मुख्तसर कॉम्बिनेशन है सूरतों के नामों में। हरूफ मुकत्तात से ये सूरत शुरू होती है। ये सूरत मक्का के दूसरे दौर में नाजिल हुई, नबूवत के तीसरे से लेके पांचवें साल तक के बीच में हुई। इस सूरत में वो हालात साफ दिख रहे हैं कि कुफारे मक्का की मुखालफत शदीद थी, जुल्म सितम अभी शुरू नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को ईदैन की नमाजों में पढ़ा करते थे। एक आपकी पड़ोसन थी, वो कहती हैं कि मैंने सूरत काफ याद ही जुमे के खुतबों में आपकी जुबान से इस सूरत को करके की। फजर में भी आप इसको अक्सर पढ़ते थे और आप इसको बड़ी अहम सूरत समझते थे। गौर से देखेंगे ना तो इस सूरत का मौजू काफ से क़यामत है और काफ से कुरान है, आखरत इसका मौजू है। मक्का में जब आपने दावत का आगाज किया तो लोगों को इस्लाम बड़ा नया लगा, खास तौर पे मरने के बाद जीना। तो इस सूरत में बड़े ही खूबसूरत तरीके से मौत के लम्हों को बयान किया गया है। वाकई एक एक लफ्ज सोने के पानी से लिखने वाला है। इसको सुनते हैं और अगर बाद में आपको मौका मिले तो इसकी तिलावत एक स्ट्रेच में सुनिए। मेरा ख्याल है कारी मिशारी और अजमी बहुत ही प्यारा इन्होंने पढ़ा इस सूरत को। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ سورت شروع ہوتی ہے۔ ایک اور اس سورت کی خوبی میں بات نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ یہاں سے آخری منزل شروع ہوتی ہے۔ جن سات منزلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آخری ہے، یعنی یہاں سے لے کے آخر تک صحابہ کرام ایک ہی اسٹریچ میں پڑھا کرتے تھے تاکہ یہ ایک ہفتے میں پورا ہو جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجید کہا، بلندی کی بات ہے۔ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو خالق یا خالق کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے جبکہ مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ پھر اس میں قرآن کی خوبیوں کا تذکرہ، آخرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان کو عقلی دلائل دیے کہ دیکھو مرنے کے بعد جینا ہے، تم اس پہ غم نہ کرو، یہ فکر کرو کہ کل ہوگا کیا اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے سامنے وہ لکھا پڑائے گا۔ گویا کہ انسان کا نام اعمال جو ہے یہ انسان کی اپنی آٹوگرافی ہے اور خود جو بولتا ہے وہ سب اس میں محفوظ ہو رہا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف چٹلا دیا، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ دیکھیے میں بھی دیکھتی ہوں، میرے سامنے بہت بڑی ونڈو میں آسمان ہے، اوپر بادل ہیں وائٹ کلر کے بہت خوبصورت، اور نیچے سبز درختوں کے پتے جھوم رہے ہیں۔ خوش ہیں کہ ہم ہوا میں ہیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ اچھا تو کبھی انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھا نہیں، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ کتنے دل نشین انداز میں آپ دیکھیے کہ قیامت کا منظر بھی ہے اور اس کائنات پہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے۔ ہم کتنا کم دیکھتے ہیں کیونکہ فکریں بہت ہیں، مصروف بہت ہیں، دماغ کہیں اور الجھا ہوئے۔ باہر سیر کرنے بھی جائیں تو ساتھ سیل فون پہ باتیں کر کے خاندانی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنے گیجٹس آ گئے انہوں نے کائنات سے ہمارا تعلق توڑ دیا۔ کبھی کھلی آنکھوں سے جا کے تو دیکھیں کیسے سورج چاند زمین آسمان کیسے پیارے انداز میں۔ اس پہ غور کرنے سے انسان کو اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے۔ میں تو بہت چھوٹی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور کیسے آسمان اتنے سالوں سے ہمارے سر پہ کھڑا ہے، کچھ کمی نہیں ہے اس میں۔ کس طرح اتنی دور سے سورج ہمارے پاس اپنی روشنیاں لے کے آتا ہے اور ہم بیٹھے رہیں۔ کیسے اللہ کہتے ہیں آنکھیں کھولنے والی، سبق دینے والی۔ آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ساری چیزوں کو کرنے والا بتاؤ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تم جھٹلاتے ہو مکہ والوں تو کوئی بات نہیں، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے۔ سب کی کامن ہیبٹ جھٹلانا، تکذیب۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی، پکڑ میں آ گئے۔ دیکھیے جھٹلانے کا ایک انجام ہے پکڑ۔ آج کے لوگ جھٹلائیں گے تو بھی، کل کے جوگوں نے جھٹلایا تو بھی۔ اس لیے آج اللہ کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کو جھٹلاتے ہوئے سوچئے۔ چھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آخرت کے امکان دیے کہ مرنے کے بعد جینا ہے، اور اب عربوں کے ان ارد گرد کی ان قوموں کا تذکرہ جن کو یہ جانتے تھے، کہا نہیں مانتے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ سب ہوگا، सो जब होगा उस वक्त तुम्हें लग पता जाएगा कि क्या था। और बाकी रह गई बात कि हमारा दोबारा तुम्हें पैदा कर देना, तो क्या बड़ी बात है? क्या पहली बार की तखलीक से हम आजिज़ थे? मगर एक नई तखलीक की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हालांकि वलकत खलकनल इंसान, और बेशक हमने इंसान को पैदा किया, और इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। वनाहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा इसके करीब हैं। वल करीब है, और हमारे इस ब्राह रास्त इल्म के अलावा दो लिखने वाले इसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज लिख रहे हैं या सब्त कर रहे हैं, यानी किरामन कातिबिन फरिश्ते। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कोई लफ्ज इसकी जुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद न हो। इसको हाईलाइट कर लें। ये कलम है हमारा, हमारी जुबान। बंद रखेंगे तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, हिलाएंगे तो लिखा जाएगा। एक धब्बा भी डालेंगे, एक लाइन भी लगाएंगे नामे अमाल में, वो भी दिखेगी। अल्लाह अकबर, ये है वो चीज जो जुबान बंद रखती है। पिछली पूरी सूरत इस जुबान पे थी, दिल और जुबान का रब। यहाँ कहा सोच लो हम लिख रहे हैं, हमें जरा से एहसास हो जाए ना कोई मेरी बातें लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। बाज लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं 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 मेरी रिकॉर्डिंग ना करें। मैं कहती हूँ क्यों? जब आप बोल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं आपको भुगतना पड़ेगा। हम अपनी अक्सर मीटिंग्स रिकॉर्ड करते हैं क्वालिटी के लिए और इनकी इसलाह के लिए, कि आपको ये बात ऐसे नहीं करनी, वैसे नहीं करनी। तो मैं इनको कहती हूँ कि आप जब बात कर रहे होते हैं किसी भी शख्स से, किसी भी मौके की मीटिंग्स होती रहती है, तो बता दिया करें कि हम ये रिकॉर्ड करेंगे, ताकि बाद में हम देख सकें कि हमारे साथियों की ज्यादती है या उनकी है। तो ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए बाज दफ़ा बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन चीज़ों को सामने रखने की। तो हम सब अपने आप को रिकॉर्ड करें, कभी अपना रिकॉर्डर खुला छोड़ दें और चलते फिरते आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर उसको बाद में सुने। चीहे मारेंगे आप, खौफ आएगा, अल्लाह मैं ऐसे बोलती हूँ, इतना भद्दा बोलती हूँ, फरिश्ते क्या सोचते होंगे मेरी बातों को देखकर। और जरा मजाक की हिस होती तो हंसेंगे कि ये देखो क्या करते हैं। और कभी हमारे बुरे कामों पे फरिश्ते रोएं अगर वो जज्बात रखते हो, जो कुछ हम सारा दिन करते रहते हैं। और बोलते बोलते एक वक्त आ जाता है कि बोलती बंद। वजात सकरतुल मौत बिल हक, फिर देखो कि वो मौत की जान को नहीं आ गई, हक लेकर पहुंच गई। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। दवाइयां खा लो, इंश्योरेंस करवा लो, चेकअप्स करवा लो, हेल्दी फूड खा लो, जर्म से फ्री चीजें ले लो, ऑर्गेनिक फूड खा लो, पोल्यूशन फ्री इलाकों में रहो, गटरों वाला पानी जिस मुल्क में उस मुल्क से दूर भाग जाओ। लेकिन वो आ गई, जालिका मा कुंत मिन्हु तहीद। कितना सच है, सारी जिंदगी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं ना, वो मौत है। बिजली की तार नंगी नहीं, उस पर प्लास्टिक लगा दो कहीं मौत ना आ जाए। हर वक्त हम लगे रहते हैं अपने आप को बचाते, लेकिन बचते कहाँ हैं? हक लेकर आ गई, जहां से चले थे वहीं आ गए, दूसरा आलम तुम्हें दिखने लगा, नबियों ने जो खबरें दी थी वो सच मालूम होने लगी, खुली आंखों से आखिरत तुम्हारे सामने आ गई। अब सोचो क्या करते थे, इसको नहीं मानते थे ना, बगैर में शुतर बेमहार फिरते थे, छुटे फिरते थे। मरने के बाद तुम्हें अब पता चलेगा कि करना क्या था, ये भी आना था, ये वक्त भी आना था, कब तक खैर मनाते? एक वक्त तो आके रहना था। ये तो तुम्हारी मौत है, अब कायनात की मौत है। वनुफिखा फिस्सूर, फिर सूर फूका गया। ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि इसके साथ एक हांकर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज है। इसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सपुर्दगी में था हाजिर है। जैसे मुजरिम को पकड़ के पुलिसमैन लाता, ये देखें ये ऐजी कैदी भाग गया था ना, इसको मैं ला रहा हूँ। यही फरिश्ते जो दुनिया में कॉल फेल लिखते थे, वो सब क्यामत के दिन कब्र के बाहर खड़े होंगे। चलो भाई, जैसे जेल के कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो दरवाजा खुलता है जब गाड़ी का, तो बाहर ही पुलिस होती है, हथकड़ियों में डाल के उसको ले जाते हैं। इस तरह वो लोग नामे अमाल साथ लेके चल पड़े होंगे। कोई कहते हैं जहन्नम में ले जाने वाला वो शैतान भी साथ होगा, जो सारी जिंदगी इंसान के पीछे था। اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، پھینک تو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ کتنا غصہ ہے اللہ کو، الکیا پھینکو اس کو جہنم میں، پھینکو اس کو، منہ کے بل ڈال دو اس کو۔ قبر سے نکلتے ہی جن فرشتوں نے پکڑا ان کو کہا جا رہا ہے جو ان کو دھکے دے کے پھینکو۔ کفار نہ شکرا، منکر حق، خیر سے روکتا تھا یعنی اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا تھا اور بھلائیوں سے روکتا تھا، نہ اللہ کا حق دیا نہ بندوں کا حق دیا، دیوار بنا ہوا تھا لوگوں کے حق کے راستے میں، ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دیتا تھا، مفاد پرست، اپنی غرض کے لیے جینے والا، خواہشوں کے لیے جینے والا، حرام طریقوں سے مال سمیٹنے والا، حرام راستوں میں صرف کرنے والا، لوگوں کے حق پہ ہاتھ اٹھانے والا۔ کوئی چیز تو اس کی رکتی نہیں تھی، نہ اس کی زبان کسی حد پہ رکتی تھی نہ اس کے ہاتھ، ہر وقت منع للخیر بنا ہوا تھا، اور مریب شک کرنے والا اور دوسروں کو شک میں ڈالنے والا، ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں اس کی بات سے۔ سوچی ذرا وہاں کیا حالات ہوں گے، اتنے میں وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگائیں گے۔ قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، یعنی میرے پہ کیوں الزام لگ رہا ہے، میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ دنیا کی دوستیاں وہاں دشمنیوں میں بدل رہی ہیں، شکایتیں لگ رہی ہیں۔ جب آپ میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا خود کو وہاں لے جائیں، اللہم لا تجعلنا منہم، پیچھے وہ صفات گنا کے بتا دیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنائیں گی۔ 10 صفات پیچھے ہیں، حق کا انکار، نہ شکری، حق اور حق والوں سے دشمنی، بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننا، اپنے مال کو اللہ اور بندوں کے حقوق سے دور کر دینا، اس میں استعمال نہ کرنا، اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کرنا، لوگوں پہ زیادتیاں، دین کی سچائیوں پہ شک کرنا، دوسروں کے دلوں میں شک ڈالنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یہ سب کچھ بتا کے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں شیطان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی۔ وہ کہے گا شیطان نے مجھے کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا، سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھ چکے نا۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان پیچھے ہو جاؤ، لا تختصم لدیا، میرے سامنے نہ لڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے بتا چکا۔ کیا وہ وقت ہوگا، اللہ کی بات نہیں بدلتی، اور اب سب جہنم میں آ گئے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأتی، وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی حل میں مزید، ہے کچھ اور بھی، کچھ اور لوگ لے آؤ اللہ، میں تو اور بھی لے آؤں گی، میرے اندر ابھی بھی اور لوگوں کی گنجائش ہے، کیا کچھ اور مجرم ہے جو آئے نہیں، ٹھونس ٹھونس کے بھرا جائے گا۔ اللہ اکبر، بس کہتے ہیں کہ اس طرح سے جہنم ٹھسی بھی ہوگی، جس چڑھائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے گا، پھر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا، جیسے اوون میں خوب چکن رکھ دیں اور اوپر سے پھر اس کو بند کر دیں۔ حلیم تلاتی، بھر گئی، کچھ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ وَعِيد، اب ایک دوسرا رخ ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، قلب منیب، کیا کہا جائے گا، ادخلوها بسلام، ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ بتائیے ذرا کیا یہ مشکل ہے، اللہ کی عدالت میں جو ہی بندہ جائے گا جنت سامنے ہے، اوزلی فتل جنت، چلنا نہیں پڑے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، पांव से चल के सवारियों पे बैठ के नहीं जाना पड़ेगा, खुद बखुद जन्नत सामने आ जाएगी। ऐसे लगता है जन्नत उसके बिल्कुल सामने होगी। सोचा और आ गई। करना क्या पड़ेगा दुनिया में, ये पांच छह काम करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा काम अवाब, नाफरमानी और नफ्स की ख्वाहिशों को छोड़कर इताअत और अल्लाह की रजा का रास्ता इख्तियार करने वाला, जो हर उस चीज को छोड़ दे जो अल्लाह को ना पसंद हो, और हर उस चीज को इख्तियार कर ले जो अल्लाह को पसंद हो। जो बंदगी के रास्ते से जरा कदम हटते ही घबरा उठे, मैं किधर चल पड़ा, तो फौरन तौबा करके बंदगी के रास्ते पे पलट आए। कसरत से अल्लाह को याद करने वाला, अपने सारे मामलात में रब की तरफ रुजू करने वाला, और साथ ही साथ हफीज, हिफाजत करने वाला, अल्लाह की हदूद और अपने फराइज की हिफाजत करने वाला, अल्लाह की बताई हुई हुरमतों और उसके सुपुर्द की हुई अमानतों की हिफाजत करने वाला, हकूक की निगहदाश्त करने वाला जो अल्लाह ने उस पर आयद किए, अहदो पैमान की हिफाजत करने वाला, अपने वक्त की, अपनी कुव्वतों, अपनी मेहनतों, अपनी स्किल्स की हिफाजत करने वाला, कोशिशों को सही रुख पे लगाने वाला, अल्लाह हमें बना दे हफीज, हर वक्त अपना जायजा लेने वाला। मुझे ऐसा लगता है मुहासिब है ये, कॉल और फेल में कहीं तजाद तो नहीं आ रहा, ठीक हो जाऊं। और सबसे बढ़ के खशी और रहमान बिल गईब, दूसरे तो लोगों से डर के काम करते हैं, ये बिन देखे रब से डरता था, अपने हवास से भी जिसको महसूस नहीं कर सकता था उसकी नाफरमानी करते हुए डरता था। अल्लाह अकबर, इसके दिल पर अल्लाह के गलबे का जज्बा था कि रब मुझे पकड़ ना ले। अल्लाह की रहमत के भरोसे पे गुनाहगार नहीं बना, बल्कि उसकी नाराजगियों से डरता रहा। इससे आप देखिए कि मोमिन की दो बड़ी अहम खूबियों का जिक्र मिलता है। एक तो यह कि वो महसूस ना होने और नजर ना आने के बावजूद अल्लाह से डरता है, और दूसरे वो अल्लाह की रहमत की सिफत से वाकिफ होने के बावजूद भी गुनाहों पे बहादुर नहीं होता। ये हैं जो दो चीजें बंदे को अल्लाह के यहाँ कदरदान बनाएंगी, अल्लाह के यहाँ बंदे की कदर करवाएंगी। खशियत, खौफ। खौफ अमूमन उस डर के लिए होता है जो किसी ताकत के मुकाबले में अपनी कमजोरी के एहसास पर हो, और खशियत उस हैबत को कहते हैं जो किसी की अजमत के तसव्वुर से इंसान के दिल पे तारी हो। यहाँ खौफ की बजाय खशियत है। पता क्या चलता है कि मोमिन का दिल अल्लाह के डर से कांप रहा होता है, उसकी सजा के खौफ से नहीं, उसकी अजमत और बुजुर्गी के एहसास से ही कांप रहा होता है। जैसे किसी की बड़ी रिस्पेक्ट हो ना आपके दिल में, तो आप उसके सामने बोल नहीं सकते, हालांकि आपने कोई गलत काम नहीं किया होता। ये मुराद है। और आखिरी बात, कल्ब मुनीब, इनाबत से एक तरफ यक रुखा, बार बार उसी की तरफ पलटने वाला, जैसे कुतुब नुमा की सुई होती है ना, कंपस की सुई कुतुब की तरफ जाती है, कितना हिलाएं वो फौरन वापस उधर चली जाती है। इस तरह कल्ब मुनीब से मुराद वो दिल है जो हर तरफ से रुख फेर कर एक अल्लाह की तरफ मुड़ गया। जिंदगी भर जो हाल अहवाल हो, खुशियां, गम, तन्हाई, बीमारी, सेहत, उसका दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ है। आप बताइए अल्लाह इसको क्या क्या कहेगा। वदखुलूहा बिसलाम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन, खुश आमदेद, हर किस्म के गम से सलामत, फिक्र से सलामत, बीमारियों से, आफात से सलामत, आओ जन्नत में फरिश्तों के सलाम की तरफ तुम्हें ले जाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि यहां पांच सिफात देकर अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। मा यशाऊ नफीहा, सोचिए दुनिया कैसी जो रब चाहे, तो जन्नत कैसी जो मा यशाऊ ना, और इतना भी नहीं वाला दही ना मजीद। जैसे आप कुछ चीजें लिख लेते हैं ना फ्लायर पे, ये भी होगा वो भी होगा, फिर कहते हैं एंड मच मच मोर एक्स्ट्रास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन लोगों का हाल क्या है। وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا, हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और दुनिया के मुल्कों को इन्होंने छान मारा, फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके, यानी दुनियावी तरक्की के रूज पे थे। इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या तवज्जो से बात को सुने। या दो बातें इस आखिरी जुमले को हाईलाइट कर लें कि जो हिदायत लेना चाहता है, नसीहत लेना चाहता है, फिर उसको कान लहू कल्बुन वल कसम वहु व शहीद, ये खूबियां चाहिए। दिल दिमाग डालेंगे तो रंग आएगा, फिर फायदा होगा, फिर मिलेगी अल्लाह की जन्नत। जो दुनिया में घूमे फिरे सब हुए लेकिन जब अल्लाह की पकड़ का वक्त आया तो बच ना सके, तो अल्लाह के रास्ते में सब कुछ डाल दें। अब आगे बताया जा रहा है कि जमीन और आसमान में ये सब कुछ है वो क्या है। फरमाया, हमने जमीन और आसमान और उनके दरमियान की चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया और हमें कोई थकन भी लाहक ना हुई। बस ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं इन पर सब्र करो और अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करते रहो, तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब से पहले और रात के वक्त, फिर इसकी तस्बीह करो और सजदा रेजियों से फारे होने के बाद भी। अल्लाह अकबर। इबादत के बाद फिर इबादत करो, तस्बीह करो, सजदे करो, फिर इबादतें करो। ये हमारे दीन की खूबसूरती। एक काम हो गया तो बस खत्म नहीं, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, जैसे हालात भी हो बस सब्र करते। फसबिर, इस रास्ते में तड़पाए जो, हिलाए जो, जुलजिलु जिलजालन शदीदा, कोई तुम्हें अपनी कोशिशों का फल न मिलता हुआ दिखे, फिर भी पूरे अजम के साथ जिंदगी भर अल्लाह के नाम को बुलंद करने की कोशिशें करो। लोगों को खैर की तरफ बुलाने की कोशिश करो, कुरान के नूर से जोड़ने की कोशिश करो। रब की हम्द और उसकी तस्बीह से मुराद नमाज है। अल्लाह कहते हैं अपनी भी इबादत पक्की रखो और लोगों की भी कोशिश करते रहो। अल्लाह हमें अपनी इबादत को खूबसूरत तरीके से करने वाला बना दे। और अब इसके बाद सूरत का अख्तिताम है, वस्तमी यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब। और सुनो, जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़े हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी ही तरफ उस दिन सबको पलटना है। कौन सा दिन? यौम तशक्ककुल अर्द अन्हुम सिरा, जिस दिन जमीन फटेगी और लोग इसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं। बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। फजक्किर बिल कुरआनी मैं यखाफ वईद। देखिए, सूरत का आगाज काफ से हुआ था ना, कयामत के तस्करों से, तो इख्तिताम काफ यानी कुरान से हो गया। पता क्या चला कि ये दो मोटिव्स हैं जो लोगों को सीधा करेंगे, एक कयामत का खौफ और एक कुरान। दुआ कीजिए कि इन दोनों के साथ हमारा ताल्लुक पक्का सच्चा बन जाए, जुड़ जाए, और हम इसमें कभी कमी ना पाए। अगली सूरत है सूरत जारियात। जारियात लफ्ज से सूरत शुरू होती है। जारियात का मानी होता है बखेरने वाली, जारा जर्रा, जारा हमजा से होता है। ये सूरत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में तब नाजिल हुई जब आपकी दावत का मुकाबला किया जाता था और आप पर झूठे इल्जाम हो रहे थे। अभी जुल्म और सितम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल मुसलमानों के ऊपर नजर आ चुकी थी। सूरह काफ के बिल्कुल करीब की सूरत थी। इस सूरत का भी बहुत बड़ा हिस्सा आखरत के बारे में तौहीद की दावत भी है, नबियों की दावत को ना मानने के नुकसान, और खास तौर पर बाप दादा के नाम पर जाहिलाना काम करने की खराबी का इसमें तस्करा है। बहुत ही सिंपल सी, आसानी से समझ आने वाली सूरत है, और खास तौर में इसमें कायनात में फैली हुई निशानियों का तस्करा है। सूरत के साथ साथ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق। कसम इन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं, फिर सुबह रफ्तारी के साथ चलने वाली हैं, फिर एक बड़े काम यानी बारिश की तकसीम करने वाली हैं। हक ये है कि जिस चीज का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच है। कितने जबरदस्त तरीके से कसमें खाकर कयामत की बात की जा रही है, और जजाए आमाल पेश आकर रहनी है। सोचिए, इससे पता चलता है कि सूरतों का आगाज सूरत के बुनियादी मजमून को बताता है। फिर ये सारी अकसाम जो हवाओं की बताई गई, इसको देख के लगता है कि जो रब इन हवाओं के ऊपर काबू पाता है, क्या वो कयामत नहीं ला सकता? मतलब यह कि रब को तुम पीछे ना डालो, वो तुम्हारे कामों को जानता है। वस्समाई ज़ातिल हुबुक, कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की। आखरत के बारे में तुम्हारी बातें ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس سے وہی پیچھے ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں وہ روزے جزا آخر کب آئے گا؟ یہاں دیکھیے کہ دنیا کے ہر کام کو کنفرمیشن کی بیس پہ لیتے ہیں اور آخرت کے پرچے کو صرف گمان پہ، ایزمپشن پہ۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ صرف چانس پہ رکھا ہوا ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ نہ کورس خریدا، نہ سلیبس لیا، نہ ٹیچر سے پڑھا، نہ کوئی انتظامات کی، اور جا رہے ہیں امتحان دینے۔ حال کیا ہوگا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی دنیا میں تم نے نہیں مانا تو دیکھو، نہیں تمہیں آخرت اچھی لگی، نہیں پیپر اچھے لگے، نہیں کتابیں اچھی لگی، تو آج بھگتو گے۔ کچھ لوگ تھے جن کو تم تو بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ ان المتقین فی جنات و عیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کی شریعت کو خوشی خوشی لیا تھا۔ جو آج دنیا میں اللہ کی شریعت پہ راضی ہے، کل جنت میں بھی راضی ہوگا، اور جو آج یہاں راضی نہیں، بالفرض محال اگر جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ وہاں بھی نقص نکالے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کریٹک، جتنا مرضی آپ اچھا بن کے دکھائیں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہی کا تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ ایسے نیگیٹو مائنڈ والے لوگوں کو جنت میں لے جانے ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس روز کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے رکھا ہوتا کہ اچھا بعد میں نیک ہوں گے۔ اور یہاں فتنہ دیکھیے جس سے بچایا اللہ نے ان کو، وہ یہی تھا کہ دنیا میں نیکی کر لو۔ دوسری ان کی خوبی کیا تھی؟ قلیلم من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ کم ہی سوتے تھے۔ اے اللہ ہماری نیند کم کر دے، اپنے خوف سے جاگنے والا بنا دے، جنت کا شوق ہمیں جگائے، جہنم کا خوف ہمیں جگائے، تیرے راستے کے کام ہمیں جگائے۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ سارے حق پہچاننے والا بنا دے۔ دیکھیے جنت عملوں پہ ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف چانس سے مل جائے گی تکے سے قیاس کے ساتھ؟ نہیں، آج متقی بن جاؤ، خبر پہ یقین رکھ لو، اپنے رویے ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، خوشیوں خوشیوں کے ساتھ ملے گا۔ کچھ گناہ ہوں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ راتوں کو تھوڑا سویا کرو، کچھ حصہ رات میں اللہ کی یاد کا، اس کی عبادت کا رکھ لو، کچھ تو کرو، کچھ غور و فکر کرو، توجہ دو۔ ان لوگوں کی راتیں فحش میں نہیں گزرتی تھی، استغفار سے گزرتی تھی۔ نیکیاں کرتے تھے دن میں، رات کو غم آتا تھا، اللہ ویسی نہیں کی جیسی کرنی ہے، تو استغفار ہوتی تھی۔ انسانوں کا حق، بندوں کا حق، آپ دیکھیے مومن کا کتنا خوبصورت نقشہ اس میں دکھتا ہے۔ اب غور و فکر کی دعوت۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اللہ ہمیں یقین دلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو اس نے کہا آپ لوگوں کو سلام ہو، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذیل لڑکے کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بھانج، انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں آ گیا ان کی صفت کے ساتھ، کیونکہ مکہ والے بھی خود کو حضرت ابراہیم کی نسل سے سمجھتے تھے، لیکن ان کے طور اتوار سے بالکل فرق تھے۔ یہ قصہ اگلے حصے میں بھی کنٹینیو ہوگا، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ یہاں تک کی بات میں اپنے لیے عمل کی بات لے لیجئے کہ مہمان نوازی اچھی ہے، اور مہمانوں کو دیکھ کر فکر مند ہونے کی بجائے خوشی خوشی سے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہاں پہ پارا پورا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔